आपको मालूम है हम इस समय एक सीरीज में है जो मत्ती उसके दूसरे अध्याय में है। मैंने आपको पहले बताया कि लूका जो जन्म के बारे में बता रहा, मरियम के ज्यादा बता रहा है, और जो मत्ती है वो यूसुफ के साथ ज्यादा बात करता है। लेकिन आज जो स्थल है दूसरा अध्याय उसके पहले पद से लेकर 12 पद तक, पिछली बार जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ साथ उसका नाम रखा गया है। और हमने चार नामों को देखा था, मसीह, यीशु उद्धारकर्ता और इमैनुएल, इन बातों को देखा था। और किस रीति से हमने देखा था कि परमेश्वर ने जो वचन या जो स्वर्गदूत द्वारा वाणी दी थी, निर्देश दिया था, उसका अद्भुत रीति से यूसुफ ने पालन किया। और तीन मुख्य बातें देखी थी। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, और हमें परमेश्वर के वचन पर पालन करना है। ये तीन मुख्य बातें थी, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, और परमेश्वर के वचन को पालन करना। ये मसीह जीवन का आधार है। सुनते हम बहुत हैं, हम कहते भी हम विश्वास करते हैं, लेकिन पालन, जब हम कोई व्यक्ति पालन करता है तो उसके जीवन से दिखाई देता है, उसके कार्यों से दिखाई देता है, उसके व्यवहार से दिखाई देता है, तो ये जरूर है। तो जब हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में प्रदर्शित होता है, हमारे जीवन प्रदर्शित, और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस रीति से जो पालन करना था वो यूसुफ और मरियम के जीवन से प्रदर्शित हुआ। जबकि यूसुफ की स्थिति और मरियम की स्थिति के बारे में पिछली बार हम विचार कर चुके थे, सरल नहीं था कि एक दूसरे को स्वीकार करना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन का पालन किया, और इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनके द्वारा बहुतों को आशीष दी। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और वचन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी आशीष देता है और हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीष प्रदान करता है। हमारा जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है, और ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है जिसको हमें समझना है और जानना है। जब हम आज आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, तो हम देखते हैं कि किस रीति से एक घटना घटती है, कि अब उसको हम कई बार बच्चे क्रिसमस के समय में ये ड्रामे में दिखाते हैं, कई बार कार्ड में देखते हैं, एक बालक चरनी में पड़ा हुआ है, मजूसी आ रहे हैं और मजूसी आके उसको दंडवत कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, कुछ है। लेकिन कुछ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो दो चीजें होती हैं, कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होती है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ स्पष्ट पूरी चीज विस्तार के साथ नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यदि वचन में जो कुछ भी प्रभु के साथ हुआ या प्रभु ने कहा और किया, अगर वो सब कुछ वर्णन किया था तो संसार में पुस्तकें ना समाती। और प्रभु ने हम सेवकों की जिम्मेदारी दी है, हमने दूसरे सेवकों से सीखा है, और बहुत सारे प्रभु ने ऐसे सेवकों खड़ा किया पूरे इतिहास में जिन्होंने खोजबीन कर करके बहुत सारी बातों को लिखा है जो मेरे और आपके ज्ञान के लिए भी जरूरी है। घटनाएं तो देखते हैं, ना केवल हम परमेश्वर के वचन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षक पर विश्वास करके हम पालन करते हैं। तो दोनों चीजें, कुछ चीजों को मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, कुछ आपके साथ इन सारी घटनाओं को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा जिनको हम देखना चाहेंगे, जाना चाहेंगे। जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इस पूरे स्थल को हम ये कह के कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय राज, डिवाइन किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय राज। आज से 2000 साल पहले, लगभग 2020 साल पहले इतिहास बताता है जन्म हुआ है। यह ऐतिहासिक घटना थी, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, और प्रभु यीशु मसीह से संसार BC और AD में चलता है, उसके इतिहास को आज भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, है ना, कह रहे ऐसा है, लेकिन प्रतिदिन उसके सामने सिर झुकाते हैं। जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तिथि लिखते हैं, तो उसमें तिथि में AD आता है, इतिहास को पढ़ते हैं BC और AD आता है। सो किसी न किसी रीति से, चाहे कितना ही विरोधी हो, कितना ही विरोधी हो, उस बात को स्वीकार करता हूं, यह ऐतिहासिक तथ्य। सो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन जो बाइबल में, वो सब सत्य है, और इसलिए हमें इसको जानना है। तो जब हम इन 12 पदों को देखते हैं तो 12 पद में तीन मुख्य बातों को हम देखना चाहेंगे। पहली बात, एक खोज जो पहले पद से लेकर 6 पद तक। दूसरी बात हम देखना चाहेंगे एक उपासना जो 7 पद से लेकर 11 पद तक है, 7 पद से लेकर 11 पद तक। फिर तीसरी बात को हम देखना चाहेंगे 11 पद और 12 पद में एक भेंट का चढ़ाया जाना। और तीन बातों पर हम संक्षिप्त में आज ध्यान देना चाहेंगे। पहले पद से लेकर राजा हेरोदेस के दिनों में जब ये यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंच कर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने सुना तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो तेरी प्रजा इसराइल का रखवाला होगा। अब इस स्थल में फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के उपनामों को देखते हैं। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बार बार यूहन्ना में इस बात का वर्णन है, पिछली बार भी हमने देखा था, यहां पर उसका नाम यीशु है, यहूदियों का राजा है, मसीह है, क्राइस्ट का जन्म है, शासक है, रूलर है, रखवाला है, चरवाहा शेपर्ड है। सो 5 नाम यहां पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं। ये नाम जो है प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, उसकी सेवा को, उसके अधिकार को प्रकट करते हैं। ये नाम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, चाहे उसको चरित्र कह दीजिए, गुणों को, उसके सेवा को जो वो सेवा करेगा, और उसके अधिकार को प्रकट करते हैं। एक शासक का क्या अधिकार है, एक चरवाहे का क्या अधिकार है, क्या सेवा है, इन सारी चीजों को प्रकट करते हैं। लेकिन जो मैं आज ध्यान लाना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि हम पहला जो बात है वो खोज पर विचार करना चाहिए, खोज। अब ये मजूसी लोग जो हैं खोज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक हेरोदेस राजा है, उस समय वो राज कर रहा है, और राजा होने के साथ जब हम उसको उसके बारे में देखते हैं तो इस राजा के बारे में कहा जाता है कि हेरोदेस राजा, उसके बाद तुरंत कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, ये हेरोदेस राजा इसकी हाइट केवल 4 फीट 4 इंच थी, 4 फीट 4 इंच, लेकिन यह बहुत क्रूर राजा था। बहुत ज्यादा विस्तार से मैं जाऊंगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा आप अध्ययन करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसके बारे में यह बहुत ज्यादा क्रूर था। यहां तक कि इतना क्रूर था कि इसने अपनी पत्नी और 3 बेटों को मरवा दिया था। इसने उस समय एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था जिसको आज मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमेंट का आविष्कार इसी राजा ने किया था, 2000 साल पहले की बात है, क्योंकि इसने अपने राज के समय में बहुत सारा निर्माण का कार्य करा था। अगर उस पर और विस्तार से आएंगे तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन जब इसने अपनी पत्नी को और अपने बेटों को मरवाया तो इतना अधिक ये व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, कि उस व्याकुलता को, परेशानी को छुपाने के लिए इसने 100 और लोगों की हत्या कराई। 100 और लोगों की हत्या करी, और 100 लोगों की हत्या करने के बाद अब सारा वहां स्थान जो था कोलाहल से भर गया, विलाप से भर गया। तो अपने विलाप को छिपाने के लिए उसने उस राज में इस प्रकार का कार्य किया। ऐसा क्रूर राजा था हेरोदेस राजा। सो ध्यान दीजिए, मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं, ये क्रूर राजा है, क्रूरता कर रहा है, और प्रजा, यद्यपि उसने यहूदियों को स्वतंत्र किया हुआ था, यहूदियों को स्वतंत्र किया हुआ था, लेकिन फिर भी कि वो अपनी आराधना करें, अपनी उपासना करें, अपने मंदिर में जाएं, परंतु लोग इससे बहुत अधिक डरते थे, और डर के कारण उसके राज में लोग किसी भी रीति से कोई भी बलवा नहीं करता था, कोई भी बलवा नहीं, क्योंकि तुरंत ये लोगों के साथ एक्शन लेता था। हाइट कितनी है, 4 फीट 4 इंच, मस्तिष्क, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, कार्य कैसे हैं, जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते।
ये इसके बारे में। लेकिन अब यहीं पर एक दूसरा राजा का जन्म हो रहा है, वो दूसरे राजा का जन्म हो रहा है जो राजा अद्भुत राजा है, जो दयालु है, एक क्रूर राजा है, लेकिन अब दूसरे राजा का जन्म हो रहा है जो यीशु राजा है, जो दयालु है, जो शांति का राजा है, जिसके बारे में लिखा हुआ है, यशाया कहता है उसकी शांति का अंत कभी ना होगा, ऐसा राजा है वो, ऐसा राजा है जिसके लिए यशाया उसके 16 अध्याय उसके 5 पद में, अच्छा उस पद को देख लेंगे, यशाया उसका 16 अध्याय उसका 5 पद, क्योंकि हम इन्हीं दिनों यीशु के बारे में थोड़ा विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तब दया का एक सिंहासन स्थापित किया जाएगा तथा उस पर दाऊद के तंबू का उठा एक न्यायकर्ता सच्चाई से विराजेगा, वो सच्चा न्याय करेगा तथा धार्मिकता में तत्पर रहेगा। ये एक ऐसा राजा है, न केवल दयालु राजा है, शांति का राजा है, लेकिन उसके पास दया के साथ, सच्चाई के साथ न्याय करने वाला राजा है। ये फर्क है। इस राज का उद्देश्य कुछ और है, और उसके लिए पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी कि उसके राज का अंत नहीं होगा, और उसने अपने राज को स्थापित किया, उसने अपने राज को स्थापित करा दूसरों की हत्या करने के द्वारा नहीं, दूसरों पर दबाव डालने के द्वारा नहीं, दूसरों का नाश करने के द्वारा नहीं, दूसरे की हानि करने के द्वारा नहीं, लेकिन अपने स्वयं के त्याग के कारण किया है। ये फर्क है। सो आज भी संसार में बहुत सारे राजा, हिटलर के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे राजा हैं, और हिटलर एक दिन उसने अपने मुंह से ये कहा था, मैंने तो संसार को अपनी तलवार के बल पर, अपनी बंदूक और तलवार के बल पर संसार को अपने अधिकार में करना चाहा, लेकिन यीशु ने अपनी दया के बल पर लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। ये हिटलर के शब्द है, ये हिटलर के शब्द मेरे प्रिय जान। और आज भी कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे राजा हैं जो इसी प्रकार के किसी ना किसी रीते हेरोदेस के स्वभाव को लेकर के अपने राज की स्थापना करना चाहते हैं। आप संसार में देखते हैं सारी जगह पे, चारों ओर हमें उसका वर्णन करने की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक भिन्न राजा है। उसने लोगों की हत्या करके नहीं, उसने पापियों का नाश नहीं किया। आप जानते हैं लोगों की विचारधारा, लोगों की धार्मिक शिक्षाएं किस किस प्रकार की हैं। उसने पाप का नाश किया, लोगों को बचाया। उसने पाप का नाश किया। पाप को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर स्वयं बलिदान हो गए। मैं और आप तो पापी थे, पाप की प्रभुता मेरे और आपके जीवन में थी, हम तो पाप के कारण नाश हो रहे थे। उस पाप ने मुझको और आपको परमेश्वर से अलग कर दिया था। उस पाप के कारण हमारा जीवन दिन पर दिन बर्बादी में चला जा रहा था, और मुझ पर और आप पर दंड की आज्ञा लग चुकी थी, क्योंकि जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो इस राजा के लिए, यीशु के राजा के लिए, जिसका जन्म हुआ, जो दयालु राजा है, जो शांति का राजा है, जो न्याय के साथ अपने राज की स्थापना करने के लिए आया, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करने द्वारा, उसके लहू के बहा जाने के द्वारा, उस पर विश्वास करने द्वारा, उसके लहू से अपने जीवन को शुद्ध करने द्वारा, पवित्र करने द्वारा, अपने मन मस्तिष्क भावनाओं को और आत्मा को शुद्ध करने द्वारा, हम उस जीवन को प्राप्त करें जो अनंत का जीवन है। सो यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में, यीशु मसीह ने इस संसार में जिसको हम कलीसिया कहते हैं, ये उसका राज है, उसने मेरे और आपके हृदय में जीवन में अपने बलिदान के द्वारा राज को स्थापित किया। ये वो राजा है मेरे प्रियो। धन्य है वो जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज को स्थापित किया, और ये कलीसिया यीशु मसीह का एक नया राज जिसकी स्थापना करने के लिए वो यहां पर आया, दुनिया में आया, और जिसको एक दिन वो अपने साथ अनंत के लिए ले जाने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद। सो ये दो राजाओं के बारे में हम देखते हैं। अब राजा की खोज हुई, अब हम थोड़ा सा खोज में जाना चाहेंगे। लिखा हुआ है ये ज्योतिषी यरूशलेम पहुंच कर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। हम प्रभु यीशु मसीह की खोज को देखते हैं, केवल इसी स्थान पर नहीं, लेकिन बार बार हम प्रभु यीशु मसीह की खोज के बारे में देखते हैं। जासूस समाचार में वर्णन है, हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय में वर्णन करते हैं, देखते हैं जब जो शिष्य यूहन्ना के शिष्य थे वो धीरे से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे पूछते हैं यीशु तू कहाँ रहता है। यूहन्ना अगर पहला अध्याय उसके 35 पद से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक घटना का वर्णन पढ़ेगा, तो उसने तू कहाँ रहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसकी खोज में हो, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तुम किसकी खोज में हो, तो तब उन्होंने कहा कि तू कहाँ रहता है, यीशु मसीह ने कहा चलकर देख लो, और तब उसके साथ रात भर रहे और तब उन्होंने यीशु को देखा, जाना पहचाना, और तब उसके बाद पहला शिष्य जो अंद्रियास था उसके पीछे आया और अंद्रियास ने जाकर अपने भाई शमौन पत्रस से, जो उसका भाई शमौन पत्रस था, उससे कहा कि मुझको मसीह मिल गया, मैंने उसकी खोज कर ली। एक खोज थी जो अंद्रियास की थी, जो मसीह को खोज रहा था, वो मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होगा, वो मसीह जो जीवन देगा, वो मसीह जो सचमुच परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करेगा, वो मसीह जो जीवन में एक अद्भुत काम करेगा, ये लोग उसकी खोज में थे। और अंद्रियास कहता है मुझको वो मिल गया है, मुझको वो मिल गया है। यूहन्ना सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 35 पद से आगे सारा वर्णन है। लेकिन जब हम छठे अध्याय में आते हैं तो वहां पर कुछ लोग खोज रहे प्रभु यीशु मसीह और भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली है। प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे प्रभु लोग पीछे आ गए। शिष्य ने कहा देख के तेरे पीछे चले आ रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये लोग इसलिए नहीं ढूंढ रहे, इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि इन्होंने अद्भुत और आश्चर्य कम देखे हैं, लेकिन इनके पेट रोटी खाकर तृप्त हुए इसलिए मुझे खोज रहे हैं। क्या कारण था? इसी से थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया था, उनको तृप्त किया था। अब ये लोग सोच लगे ठीक है हम यीशु के पीछे चलेंगे, वो कहां चला गया, अरे कल तो हमारे साथ था आज कहां चला गया, हम उसको खोजेंगे कहां है, उसके साथ रहेंगे हमें रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, मकान मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, जीवन स्वास्थ्य भी मिलेगा, हम बीमार है चंगे हो जाएंगे, हमारे पास नौकरी नहीं नौकरी मिल जाएगी, हमारी शादी नहीं हो रही हमारी शादी हो जाएगी, हमारे पास ये नहीं तो ये हो जाएगा। और कितने लोग आज इसी प्रकार की खोज रहे, क्यों लोग इधर से उधर भाग रहे, क्यों भागते? प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग सोचते हैं कि केवल वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, नहीं, हाँ चंगा उसके अधिकार में। कुछ लोग सोचते हैं मुझे सफलता देने वाला परमेश्वर है, केवल यही नहीं, हाँ वो सफलता देना उसके अधिकार में। कुछ लोग सोचते हैं मेरा विवाह करा दे, हाँ उसके पास अधिकार है, लेकिन केवल यही नहीं। यदि मेरी और आपकी खोज केवल शरीर 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 और संसार है, प्रभु यीशु मसीह को हम इसलिए खोज रहे हैं, तो आपकी खोज सच्ची नहीं। प्रभु कहता है ये वे हैं जो केवल रोटी खाकर तृप्त हुए, और इसलिए मुझे और आपको जाना है कि हम किस यीशु की खोज में हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन में पाया है, क्या सचमुच वो मेरे और आपके जीवन का उद्धारकर्ता बना है, क्या सचमुच में मेरे और आपके जीवन के पीछे चल रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं मेरे जीवन में, मेरे सोच में, मेरे मस्तिष्क में। तो हेरोदेस ने भी लोगों का कहा उसको खोजो और खोज कर मुझको बताओ। क्यों खोजना चाहता था वो? इसलिए खोजना चाहता था ताकि वो उसको क्या कर दे, मार डाले। हम दूसरे स्थल में कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन ये खोज, अब मजूसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दू, मजूसी लोग उस समय में परमेश्वर के दया से जो उसके पास करते थे बहुत ही अच्छी रीति से लोगों के सामने उनका स्थान था, लोगों के सामने वो कहना चाहिए इन लोगों के का समाज में बहुत ही सम्मान था, पहली बात। दूसरी बात ये भविष्य को क्या नाम से बताने वाले लोग थे। आपको मालूम होगा जब दानिय्येल की पुस्तक में आप दूसरे अध्याय में अध्ययन करेंगे तो राजा ने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न देख करके बहुत ही व्याकुल हो गया, और जब वो व्याकुल हो गया तो राजा ने सारे वहां पर जितने ज्योतिष थे उसको बुलाया। यदि सच है पुराने समय में झूठ खोजा करना ये सब कुछ करना भविष्य को देखना गलत था, लेकिन उस समय राजा, क्योंकि राजा परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानता और इसलिए उसका भरोसा इस ज्योतिषी पर इन सब पर था, और तब उनको बुलाया और कोई भी राजा का स्वप्न नहीं बता सके। जब राजा का स्वप्न नहीं बता सके तो क्या हुआ, राजा ने उन सबको मरवाया और तब किसी ने कहा एक है जो राजा तेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा और उसका नाम दानिय्येल, और तब दानिय्येल को बुलाया गया, दानिय्येल के साथ बुलाया गया और दानिय्येल ने प्रार्थना की। दानिय्येल कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जो भेदों को खोलने वाला है, ये सच है मेरे प्रियो। परमेश्वर वेदों को खोलता है, वचन संहिता उसके 25 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है कि जो उसके मार्गों पर चलते हैं परमेश्वर उनके सामने रहस्य को खोलता है, और हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं। और तब उसके बाद दानिय्येल ने प्रार्थना की, दानिय्येल के साथियों ने प्रार्थना की, और परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर ने उसके सामने उस रहस्य खोला। और मेरे प्रियो आप जानते हैं दानिय्येल की दूसरे अध्याय में क्या वर्णन पूरे रही, परमेश्वर ने दानिय्येल को स्वप्न भी बताया और उसका उत्तर भी बताया और उसने राजा को जगा। तो बहुत सारी चीज, तो लोग इनका सम्मान करते थे जो इस तरह से ये तारे और चांद के बारे में विज्ञान रखते थे, जो ज्योतिषी थे तारे और चांद के बारे में भी ज्ञान रखते थे। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा कारण इनको स्वप्नों का अर्थ भी मालूम होता था, बताते थे। राजाओं के चुनाव में भी इनका योगदान रहता था, कई बार पूछा जाता था इनसे और ये बताया करते थे कि हाँ इस राजा को बनाना चाहिए। ये इसके साथ साथ उन भविष्यवाणी को भी जानते थे जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई थी, इसीलिए नबी शब्द आया है, इसीलिए उन्होंने कहा जो नबियों ने कहा है, वो परमेश्वर के वचनों को भी जानते थे। इस प्रकार के ये सारे ज्योतिषी थे, ज्ञान था इनको, वचन का ज्ञान था और उन्होंने वचन में पढ़ा था। अब पढ़ने के बाद सब कुछ को बात में ये खोज के लिए आए हैं। लिखा हुआ है कि जब कि हमने एक तारा देखा है, मेरे प्रियो तारे में जादू नहीं था। हम लोग तारा दिखाते हैं, अच्छी बात है ना, लेकिन भूल जाते हैं ये तारे को देखकर नहीं चले थे, लेकिन तारे को नियंत्रण करने वाला कोई और था, तारे को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जिसके अधिकार में सब कुछ है, स्वर्ग और चांद और तारे सब कुछ उसके अधिकार में, परमेश्वर तारे को आज्ञा दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि तू इस प्रकार से आगे बढ़। तो परमेश्वर और तारे के बीच में ये लोग मजूसी है, और परमेश्वर मजूसी के इस प्रकार से ज्योतिषी की इस प्रकार से मदद कर रहा है और ये खोज कर रहे, किसकी खोज कर रहे हैं। लिखा हुआ है हे बैतलहम यहूदा में, वो कह रहे पांच पद में उसने कहा यहूदा के बैतलहम के में, क्योंकि नबियों के द्वारा ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हे बैतलहम तू यहूदा के प्रदेश में है, जो प्रदेश में यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा, एक रूलर निकलेगा, एक राजा निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा होगा। ये राजा केवल शासक ही नहीं है, लेकिन इस राजा में एक गुण है, वो चरवाही का गुण है, और यीशु मसीह मेरा और आपका सच्चा और अच्छा चरवाहा है। हम उसकी चराई की भेड़े हैं, वो मुझे और आपको हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदाई के जल के झरने के निकट बैठाता है, वो मेरे और आपके जी में जी ले आता है। कितना सुंदर से भजनकार भजन संहिता 23 को वर्णन करता है, वो ऐसा चरवाहा, इस चरवाहे का जन्म हुआ है, जो चरवाहे मेरे जीव में और आपके जीवन में चरवाही करने के तैयार है, जो सच में मुझे और आपको आत्मिक भोजन देने के तैयार है, आत्मिक भोजन से तृप्त करने के तैयार है। क्या मैं और आप उसकी वो भीड़ है जो आत्मिक भोजन के लिए भूखी है? प्रश्न यह है, क्या मैं और आप उसकी वो भीड़ है जो उसके आधीमी और मधुर आवाज को सुनने के लिए तैयार है, जो चरवाहे की आवाज है? प्रश्न यह है, क्या हम उसकी वो भीड़ है जो सचमुच उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसके साथ चलते हैं? वो कई बार छड़ी से मुझे और आपको, वो उसके हाथ में, मैं बार बार बोलता हूं, उसके हाथ में लाठी भी रहती है, उसके हाथ में छड़ी भी रहती है। लाठी इसलिए रहती है ताकि जो दूसरे पशु दूसरे जानवर आक्रमण करते हैं भेड़ों को, वो उनको मारे, लेकिन छड़ी रहती है ताकि भेड़ इधर उधर आए तो उसको हल्की सी छड़ी लगा के पूरे रास्ते में ले आए, ताकि उसकी आवाज को सुन सके। और कभी कभी वो चरवाहा मुझ पर आप और आप पर छड़ी भी लगाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सर, जब मेरे प्रियो मेरे और आपके पर कभी भी कोई कठिनाई आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, क्लेश आता है, हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में जाना है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद कहता है, भला हुआ ये कष्ट मेरे पर आया जिससे मैंने यहोवा की व्यवस्था का पालन करना सीखा। पीड़ित होने से पहले भजन संहिता 119 उसी में 74 में है, 71-74 के बीच में, मैं पीड़ित होने से पहले तेरे वचन को, तेरे व्यवस्था को मैं भूल चुका था। मैं बार बार अपनी साक्षी देता हूं, 2017 में जब मुझे बेल पाल्सी का अटैक पड़ा था 17 सितंबर, और उस दिन रात में, संडे का दिन था, भाई फिलिप मुझे अस्पताल ले गए, आप तो मालूम है जो समय कलीसिया में थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, उस रात्रि में मैं सो नहीं पाया, मैंने परमेश्वर के वचन को खोला और परमेश्वर ने अय्यूब 5 अध्याय से मुझसे बातचीत की। मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा, पश्चाताप के कुछ बातों की क्षमा मांगी, अपने युग को पुनः समर्पित किया और वो बीमारी मेरे लिए आशीष का कारण बन गई। आंटी, अगर शायद वो अस्पताल में नहीं गई होती तो जिस रीति उसके बाद उनके अंदर जो बोझ आया परमेश्वर के वचन का बहनों के साथ बांटना, उससे पहले नहीं था। उसके बाद परमेश्वर ने उनसे बातें की अस्पताल में रहते हुए, और उसके बाद प्रभु ने उनको जीवन दिया, और प्रभु का धन्यवाद हो जो परिश्रम कर सके और कर रहा है। ये जीवन क्या है? परमेश्वर छड़ी लगाता काय के लिए लगाता है? वो चरवा है, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी को देख कर ये खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? एक चरवाहे की खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? एक शासक की खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? एक मसीहा की खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? एक यीशु की खोज कर रहे हैं जो सच में मेरा और आपका उद्धार करता है। क्या हम उस उद्धार करता यीशु की खोज कर रहे हैं, खोज में? क्या हम सचमुच में उस मसीह की खोज में जिसने मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया है? क्या हम सचमुच उसकी खोज में जो एक सच्चा, अच्छा, ईमानदार, न्यायी शासक है और उसको अपने शासक बनाने तैयार है? क्या हम सचमुच उस चरवाहे की खोज में जो मुझे और आपको तृप्त करता है, मुझे और आपको सही रास्ते पे ले चलता है, वचन से भरता है, उसके ज्ञान से भरता है और मेरे और आपके आत्मिक जीवन को और अधिक पौष्टिक बनाता है? क्या हम उसकी खोज में, ये मजूसी उसको खोज रहे थे? धन्य है वे लोग जो आज भी उन मसीहों के समान, जिनके हृदय में ये भावना पाई जाती है, प्रभु हम आपको इस तरह से खोजना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यर्मिया 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यदि हम सचमुच संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को ढूंढने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर हमें मिलने के लिए भी तैयार है। हम किसको ढूंढते हैं? किसको ढूंढते? सुबह उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल को ढूंढते हैं, चाय को ढूंढते हैं, कॉफी को ढूंढते हैं, सबसे पहले कुछ और चीजों को ढूंढते हैं। कितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को ढूंढते हैं, और कितना अधिक? तो ये लोग वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, जिसको उन्होंने जान लिया था कि यीशु कौन है। तब उसके बाद जल्दी से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तब हेरोदेस ने ज्योति को चुपचाप साथे फंसे ज्योतिष को चुपचाप बुलाकर उस बात को निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के का सावधानी से पता लगाओ, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं जाकर उसे दंडवत करूं। क्या राजा सच बोल रहा है? क्या राजा सच बोल रहा है? नहीं। क्या वो दंडवत करना चाहता था? नहीं। उसके हृदय में तो कौन मेरे अलावा और राजा उत्पन्न हो गया है? कौन है जो मेरे शासन में दूसरा राजा करे? कोई और है जो मेरे अलावा यहां पर हो सके? उसके अंदर तो और क्रूरता उत्पन्न हो गई, और क्रोध उत्पन्न हो गया, बदले की भावना उत्पन्न हो गई, जलन उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ये हो गया, मेरे अलावा और कौन राजा हो सकता है, मेरे अलावा और कौन शासक हो सकता है, और झूठ बोलने में लगा। और मेरे प्रियो, ये सच है, मुझे और आपको सचेत होना चाहिए अपने उस हृदय में। हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, और उसमें असाध्य रोग लगा, किस प्रकार से मुझे और आपको नियंत्रण कर लेता है, और हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो उसको दंडवत नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसकी हानि करना चाहता था, उसको मारना चाहता था, और हम जानते हैं बाद में उसने क्या किया। तब उसके बाद तब हम आगे देखते हैं, और देखो जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था उसके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक वहां पहुंचकर उस स्थान पर ऊपर ना ठहर गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए, उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को, उसकी माता मरियम को साथ देखा। हम क्या करते हैं जब हम ड्रामा करते हैं या कार्ड देखते हैं? सब कुछ हम देखते हैं कि बच्चा चरनी में पड़ा हुआ है, और चरनी में है, और लोग उसको उपहार दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब ये बालक बड़ा हो गया है, चरनी में जन्म हुआ, लूका वर्णन करता उसका चरन, सराय में जगह नहीं थी तो गौशाला की चरनी में जन्म हुआ, लूका में वर्णन है गौशाला में। लेकिन अब ये बच्चा क्या लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है 11 पद में, उन्होंने घर में पहुंच कर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। घर पहुंचकर अब माता मरियम और ये वहां से निकल गए। अर्थात बाइबल के कमेंटेटर इस बात को बताते हैं, टीकाकार इस बात को बताते हैं कि ये इस समय इसकी आयु 40 दिन से बढ़ गई थी। इसके माता पिता ने वचन के अनुसार व्यवस्था अनुसार ले जाकर के 40 दिन में उसको समर्पण अर्पण कर दिया था। अब ये अपने घर में रह रहे थे, मरियम अपने घर में आ गई थी, बालक वहां पर था। वही तो हम कई बार सोचते हैं कि शुरू से हम सोचते हैं कि नहीं चरनी में वहां पर तुरंत तुरंत ऐसा नहीं हुआ, समय निकला है, समय लगा है। मैं आपको बता रहा था कि प्रभु ये जो दो अध्याय हैं, चाहे लूका के दो अध्याय देख लीजिए, चाहे मत्ती के दो अध्याय देख लीजिए, ये लगभग 30 साल को कवर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के 30 साल को कवर करते हैं। और ये 30 साल में जिसमें प्रभु यीशु मसीह अभी अपने माता पिता के अधीनता में, लूका उसके 30 अध्याय को जो आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मालूम चलेगा, 30 साल को वो 30 साल तक अपने घर में अपने माता पिता की अधीनता में रहा और तब उसके बाद सेवा में गया। हाँ ये जरूर था वो हर साल अपने माता पिता के साथ, यूसुफ और मरियम, उसने माता कभी नहीं कहा, यूसुफ और मरियम के साथ मंदिर में जरूर जाया करता था। इसीलिए जब वो 12 वर्ष का था और मंदिर में था, लोग उसे विवाद कर रहे थे, ये यूसुफ और मरियम निकल आए और देखने लगे कहाँ है, और यूसुफ वो तो यीशु तो उनसे बातचीत वार्तालाप कर रहा है, लोग कहने लगे जाकर अरे अरे तेरे माता पिता तुझे ढूंढने, तू यहाँ बात कर रहा है। तो उसने कहा मुझे अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है। सो हर साल वो तो 30 साल तक उस ऐसे का होता रहा। तो इस समय वो अपने घर में है, बालक की आयु थोड़ा सा बढ़ गई है, अब वो 1 या 2 या 3 दिन का नहीं है। और इस समय में क्योंकि उनको यात्रा करने में, इन खोजों को खोजने में भी समय लगा, करीब 600 मील की यात्रा करके, 600 मील की यात्रा करके लोग वहां पर पहुंचे थे, वहां पहुंचे थे ये मजूसी लोग। गिनती हम सोचते हैं कि 3 मजूस थे क्योंकि 3 भेंट वहां दिखाई देती है, सोना मुड़ लोबान, इसलिए हम 3 सोचते हैं। नंबर नहीं दिया गया, 3 मजूस, और हमने गाना भी बजाते हैं 3 मजूस, क्योंकि हमने उस कल्पना करके उस चीज को ऐसा बना लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको हम समझना, इस चीज को समझ। और इसलिए जब इन बात को, तब मैं ही नहीं कह रहा हूं कि हम पाप करते हैं गलत करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, परंतु वचन क्या कह रहा है उसको हमें समझना है, सीखना। अब ये यहां पर पहुंचे, लिखा हुआ है, सो इन्होंने उसको जाकर के क्या करा, साथ देखा और दंडवत किया। ये आराधना है, उन्होंने किसको देखा है, उन्होंने यीशु को देखा है, किसको देखा है, उन्होंने मसीह को देखा है, किसको देखा है, उसने शासक को देखा है, उसकी वो आराधना कर रहे हैं। आप किसकी आराधना करते हैं, जब आप यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो आपके सामने क्या दृश्य आता है, सार्वभौमिक परमेश्वर सही है, वो सार्वभौमिक परमेश्वर है, लेकिन कितना अधिक आपके अंदर आता है कि वो आपका उद्धार करता है और आपके जीवन में उद्धार के कार्य की निष्ठा और अधिक मजबूत होती चली आती है कि उसने आपके पापों को क्षमा किया है, आपने उसके द्वारा जीवन को पाया है, आपने उसे पापों की क्षमा को प्राप्त करके अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। कितना अधिक जब आप उसकी आराधना उपासना करते हैं, अपने घर में भी आप करते हैं, आप उसको देखते हैं कि सच में वो एक शासक है, शासक है, उसका अधिकार है। अगर शासक कोई आदेश दे देता है लोग उसका पालन करते हैं। अभी हम क्यों ये सब अपना मास्क लगा के बैठे और बार बार कहता है मास्क लगाइए, ये करिए करिए, क्यों? क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, शासकों ने अनुमति, ये आदेश दिया है अपने देश के लिए और हम उसको पालन कर रहे हैं कहीं भी, और शासकों का आदेश का पालन करना अनिवार्य है। जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उस शासक ने बहुत सारे आदेश दिए हैं, चाहे उसकी आराधना के संबंध में हो, चाहे उसके दिन के का सम्मान करने के संबंध में हो, चाहे अपने दशांश को देने के संबंध में हो, चाहे एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के संबंध में हो, चाहे एक दूसरे के साथ पवित्रता से जीवन व्यतीत करने में हो, जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन देते हैं उस शासक के आदेश हैं, निर्देश हैं, आज्ञा हैं, हम कितना अधिक उसको पालन करते हैं। मुझे और आपको सोच, मेरे प्रियो, काश मेरी और आपकी आराधना शब्दों के साथ साथ जीवन के साथ हो सके, शब्दों के साथ साथ व्यवहार के साथ हो सके, शब्दों के साथ साथ कार्यों के साथ हो सके, ये हो सके। मुझे अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आपको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रकार से हम इस कलीसिया को, इस परिवार को और मजबूत कर सकते हैं। कहता है ये करा उसने, उनको दंडवत किया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके हृदय में कितना अधिक उसको दंडवत करने के लिए अभिलाषा है, कितना अधिक। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए पथ का उजाला है। परमेश्वर का वचन वो दो धारी तलवार के समान है जो मेरे और आपके हृदय को आर पार गुदे गुदे काटता और छांटता है, ताकि मुझे और आपको और अधिक सिद्ध बनाए। ये परमेश्वर का वचन है। मैंने आपसे कहा तारा कोई विशेष चीज नहीं, सृष्टि का एक भाग था, पर नियंत्रण किसका था? परमेश्वर का नियंत्रण। परमेश्वर ने उसको नियंत्रण करके उसको चलाया है, वो आगे बढ़ा रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने तारे को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इस स्त्री को चुन लिया। मरियम में कोई विशेषता नहीं थी, वो और औरों के समान थी, उसकी बहन एलिशिबा भी उसके साथ थी, वो भी पवित्र थी, पर परमेश्वर की दृष्टि उस पर गई। और इसलिए परमेश्वर को, क्योंकि अपने वचन को पूरा करना था, हाँ मरियम ने अपने जीवन को नम्रता के साथ समर्पित किया, वो सारी लज्जा को, सारी चीज को सहने की तैयार हुई, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि परमेश्वर उसके साथ क्या करने जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको दूसरों के लिए आशीष का कारण है। मरियम मध्यस्थ नहीं है, मरियम मध्यस्थ नहीं, मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह। कई बार लोग कहते हैं मरियम मध्यस्थ है, मध्यस्थ नहीं, प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है, और कोई मध्यस्थ नहीं। इस पे यशा उसके 59 अध्याय का अध्ययन करिए, कहता कोई मध्यस्थ नहीं, और तब वहां कहता है एक मध्यस्थ होगा जो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में केवल यीशु मसीह मध्यस्थ है और कोई नहीं है जो मुझे और आपको पहुंचाता है। अंतिम बात जब तब उसने, हम देखते हैं किस प्रकार से इन भेंटों को चढ़ाया। सोना, सोना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर के वैभव को प्रकट करता है, परमेश्वर के गौरव को प्रकट करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है, वैभव का परमेश्वर है, स्वाभाविक है वो महिमा को प्रकट करता है। और इसीलिए आरंभ से जब देखते हैं, जब वाचक का संदूक बनाया गया था, परमेश्वर ने सोने का इस्तेमाल किया। चांदी जो थी वो सेपरेशन को प्रकट करती है, जो धातु है वो भी अलग अलग चीजों के द्वारा प्रकट करती है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, जो वो बनाया जाता था तब वाचक संदूक, तो नीचे की उसकी चीज जो लकड़ी का जोर रखता था, तो उसमें चांदी के लगते, वो पृथ्वी पे टिकती थी लेकिन पृथ्वी से अलग है, इस तरह के सेपरेशन को दिखा तरह से यह है। तो सोना महिमा का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह वो राजा है जो महिमा का राजा है, जिसके अंदर सारा वैभव पाया जाता है, सारा अधिकार पाया जाता है, सारी सामर्थ पाई जाती है। और एक दिन वो महिमा जो अनंत का उत्पत्ति के समय में उसकी थी, उसी महिमा में परमेश्वर मुझे और आपको प्रवेश कराएगा, जो प्रकाश वाक्य में उसके 21 और 22 अध्याय में देखते हैं, उसी महिमा पर प्रवेश कराएगा जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जिन्होंने उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। लोबान उसके बलिदान का प्रतीक है, लोबान उसके बलिदान का प्रतीक है, वो मेरे और आपके लिए बलिदान होगा और उसे बलिदान किया है। गंधरस मृत्यु का प्रतीक है, आज भी हम देखते हैं जब किसी मृत्यु होती है उसको आज भी इस्तेमाल किया मृत्यु। तो ये चीजें थी इन ज्योतिषियों के द्वारा जिन्होंने परमेश्वर के वचन में देखा था, नबियों की पुस्तकों को पढ़ा था, नबियों के पुस्तकों को जाना था, और उन नबियों की पुस्तक में सब कुछ यीशु के बारे में बता दिया गया था। यीशु कैसा राजा होगा? वो ऐसा राजा होगा जो महिमा का राजा होगा, जिसके पास वैभव है, जिसके पास अधिकार है, वो महिमा का राजा है। वो राजा होगा जो मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान करेगा, क्रूस पर बलिदान करेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जुटेगा। वो राजा जो मेरे और आपके लिए मृत्यु सहेगा, इसलिए मृत्यु सहेगा ताकि मुझे और आपको जीवन मिल जाए, इसलिए मृत्यु सहेगा ताकि मुझे और आपको जीवन मिल जाए। उसकी मृत्यु के द्वारा हमने जीवन को पाया है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसकी मृत्यु के द्वारा मैंने और आपने आनंद के जीवन को पाया। यदि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए होते और वो अपने आप को बलिदान ना किए होते, मारे ना गए होते, मेरे प्रिय लोगों के पास जीवन की कोई आशा ना होती, लेकिन वो मारे गए। परंतु परमेश्वर है, इसलिए मृत्यु उसको अपने अधिकार में नहीं रह सकी, इसलिए तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। ना केवल परमेश्वर के वचन को पूरा होना था, लेकिन उसके अधिकार को प्रदर्शित करना था, प्रमाणित करना था, और उसने प्रदर्शित किया, प्रमाणित किया कि वो मृत्यु से श्रेष्ठ है, मृत्यु श्रेष्ठ है, और उस सर्प को उठा लिया गया और फिर से वो आएगा ताकि मुझे और आपको हमेशा हमेशा ले। मेरे प्रियो, जब हम बड़े दिन के बारे में सोचते हैं तो बड़ा दिन केवल एक दिन में नहीं सिमट जाता, एक दिन बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान की ओर ले आता, क्योंकि सब कुछ कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए जब हम बात को देखते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तब 12 पद में, तथा स्वप्न में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। एक राजा ने आदेश दिया था, दंडवत करके मेरे पास आना। एक स्वर्गीय राजा आदेश दे रहा है, परमेश्वर राजा आदेश दे रहा है, इस मार्ग से मत जाना, दूसरे मार्ग से चले जाना। ये मार्ग ठीक नहीं है, क्योंकि राजा जो विचार कर रहा है वो क्या चाह रहा है, और बाद में हम देखते हैं किससे। तभी उसी के बाद वो क्रोधित हुआ और उसने फिर उन 2 साल के बच्चों को मरवा डाला, यद्यपि परमेश्वर के वचन पहले से ये कहा गया था कि ऐसा होगा। पुराने नियम में हम उन भविष्यवाणी को देखते हैं। सो मेरे प्रियो, संक्षिप्त में अंत में क्या कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत राजा, वो सच में वो यीशु उद्धार करता है, वो मसीह बलिदान क्या हुआ, वो शासक है, अधिकार उसके पास है, वो अच्छा चरवाहा है। इन बड़े दिन के समय में उत्सव के समय बहुत अच्छा मैं और आप उत्सव मनाए, हम और अधिक आनंद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, प्रभु संगति करना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन, ये चीजें मेरे और आपके जीवन प्रभु तक है। मुझे और आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इन चीजों के अर्थ को मुझे बताइए और मैं और अधिक आपके साथ निपट सकूं, और अधिक आपके पास आ सकूं, और अधिक आपके साथ रह सकूं, और आप मेरे जीवन में यीशु दिखाई दे, आप मेरे जीवन में मसीह दिखाई दे, आप मेरे जीवन में उद्धारकर्ता दिखाई दे, आप मेरे जीवन में अच्छे शासक दिखाई दे, कि मैं आपके शासन को स्वीकार करते उसको मान सकूं। कई बार परमेश्वर की आवाजों को सुनते हैं लेकिन फिर हमारी आवाजें उस पर प्रबल हुई, ठीक है, परमेश्वर ने आजादी दी है, लेकिन एक दिन मुझे और आपको परमेश्वर सामने खड़ा होना पड़ेगा और हर बात करने आ जाएगी। मैं डरता हूँ आज मेरी आंख बंद हो जाए, आज मेरी आंख बंद हो जाए, मुझे नहीं मानता, मुझे पश्चाताप करने का अवसर भी ना मिले। और मैं एक ही बात को मांगता हूँ प्रभु से, प्रभु केवल एक ही चीज मांगता हूँ, अगर मेरी आंख बंद हो जाए और आपके सामने मुझे खड़ा होना, केवल मैं आपके मुख से एक बात सुन सकूँ, शाबाश मेरे उत्तम दास, तो थोड़े में विश्वास आ, मैं तुझे बहुतों का दिखा था, तो थोड़े में विश्वास होगा, मैं तुझे बहुतों का, यही मांग, मेरी यही अभिलाषा प्रभु मेरी और आपके साथ, कि इन दिनों में हम गंभीरता से अपने जीवन को देखें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु मुझे और आपको आशीष दे और मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण, दूसरों के लिए। ये क्रिसमस का समय केवल अपने आनंद को पाने का, लेकिन दूसरों के साथ आनंद बांटने का कारण बने और दूसरों को भी जान सके। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत राजा है, हम किसकी खोज करना चाहते हैं, हम किस तरह से उसको धन्यवाद करना चाहते हैं, हम क्या चीज उसको भेंट करना चाहते हैं, कौन सी बहुमूल्य चीज है जिसको हम भेंट करना चाहते हैं। आपका जीवन, मेरा जीवन क्या समर्पण किया है, समय, योग्यताएं, धन, मेरे प्रिय कितना अच्छा हो कि हम इस बात को समझ सकें। हमारा समय जो प्रभु ने कलीसिया के लिए दिया हुआ है, अच्छा हम उस पर कलीसिया के स्थान दे करके कलीसिया में आ सके। आज मुझे अच्छा लग रहा है बहुत सारे लोग के लिए जिनको बहुत दिन बाद मैं देख रहा हूँ, प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आनंदित है। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से करते हैं तो आप हमारे हृदय को आनंदित करते हैं, हमारे सेवा को उत्साहित करते हैं, हमारे जीवन को उत्साहित करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए आंसू बहाते हैं, हम आपके लिए परिश्रम करते हैं। और मेरे प्रियो, आपकी उपस्थिति न केवल परमेश्वर की महिमा का, लेकिन आपकी उपस्थिति एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का। मैं ऐसे समय से निकल कर गया हूँ जहाँ पर मुझे 5 साल तक एक ऐसी कलीसिया में रहना पड़ा, लेकिन मैं और परिवार जाते थे, चुपचाप से बैठते चले आते थे, लेकिन बाद में उसी कलीसिया ने और उस कलीसिया के हिस्से को दूसरों ने जाना और उन्होंने सच उस बात को स्वीकार किया, बाद में प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने प्रशंसा की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भवन को ना तिस्कार, परमेश्वर के भवन को ना तिस्कार, इस भवन को बनाने के लिए, इस स्थान को बनाने के लिए, इस कलीसिया को बनाने के लिए, आपको मुझे कलीसिया में जोड़ने के लिए प्रभु ने त्याग किया है, वो सर छोड़कर के इस पृथ्वी पर आया ताकि इस पृथ्वी पर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कलीसिया में अपने राज को स्थापित कर सके, राज को स्थापित, और वो राज प्रभु यीशु मसीह राज हमें अपने जीवन से प्रदर्शित करना प्रोत्साहित करना।